thinking, and he's an exponent in the lectures. He's very nice. So I thought it would be a great opportunity for Sarvabhauma Prabhuji to share again with the other, all of us here, and to also put us into the same ecstatic transcendental ocean of Krishna consciousness here. So we'll have Prabhuji talk today, and maybe Prabhu can talk about himself a little to make others more, get more realization also. So I expect Prabhu also to talk about it.
Hare Krishna.
Serving Srila Prabhupada, who is a discount founder acharya, and he has been serving for many years and involving giving enthusiasm to a lot of devotees to fall into the same line of Krishna.
Thank you, Charu Mataji. Hare Krishna. Please, we are going to meditate for 1.5 minutes. Just fold your palms, close your eyes, and repeat after me a 12 syllable simple mantra repeated by it was छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव महाराज के द्वारा नारद के आदेश के ऊपर जप करने से 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ, तो बच्चा भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो हम सबके लिए आशा है। ये आशा मन में रखकर हमारे पीछे आप दोहराइएगा, पहले हम कहेंगे फिर आप कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत में पहली प्रार्थना एक माता जी की है, एक नारी की है, एक महिला की है। व्यास देव ने भागवत में कुंती महारानी की प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया है, और माँ कुंती ये शब्द जब बोलती है तो भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ के द्वारका जाने को तैयारी कर चुके हैं हस्तिनापुर से, लेकिन माँ के शब्दों को सुनते हैं, रथ से उतर के आते हैं, कुंती महारानी का चरण स्पर्श करते हैं, और फिर हस्तिनापुर में अधिक समय के लिए रुक जाते हैं। तो एक माता भी भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर सकती है, तो कुंती महारानी के इस प्रार्थना के शब्दों को हमारे पीछे दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
देवकी नंदनाय च,
देवकी नंदनाय च,
नंद गोप कुमाराय,
नंद गोप कुमाराय,
गोविंदाय नमो नमः, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव को अंगीकार करके भक्त के रूप में जब इस धरती के ऊपर 500 वर्ष पहले आए तो कहा आराध्यो ब्रजेश तन्यम। अगर किसी की आराधना करनी है तो ब्रजेश, ब्रज का जो राज है नंद बाबा, उसका तन्य जो उसका बेटा है, उस श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। तव धाम वृंदावनम, और उसके वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। बोलो उसकी पूजा कैसे करें, गोपी वर वधु, जैसे गोपियां हैं वो भगवान से प्रेम करती हैं, उस भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहां से ये पता लगे, तब कहते हैं श्रीमद भागवतम प्राणम अमलम। ये अमलम जिसमें कोई मल नहीं है, परम पवित्र भागवत पुराण है, उसके द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो उस महाप्रभु के संग में जो पार्षद आए थे, जिन्होंने भगवत प्रेम को, भागवत रस को, भागवत कथा को, भागवत धर्म को प्रचारित किया, उनकी अनुमति लेके भागवत में प्रवेश करना, तो उनके नामों का उच्चारण हम करते हैं, आप हमारे पीछे कीजिए। ये प्रेम के, आनंद के खजाने के ताले को खोलने का पांच तत्व मंत्र है आप। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वास आदि गौरा भक्तवृंद। और भागवत का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये तो भागवत का संदेश का अंतिम श्लोक व्यास देव ने अंकित किया है भागवत में कि नाम संकीर्तन यस्य, जहां भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और ये नाम संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को, ब्रह्मा जी जो उनकी पहली इस संसृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो क्रिएशन के लिए पहला क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा जी है, उसके कलिसंत्रण उपनिषद में कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए ये 16 अक्षर का इति षोडश कम नाम नाम कलि कलमशनाशनम, कलयुग के पाप ताप संताप के लिए नाम संकीर्तन ब्रह्मा जी के द्वारा नारद को उपदेशित कलिसंत्रण उपनिषद में ये 16 अक्षर है, आप उच्चारण करेंगे हमारे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भागवत के प्रवक्ता पीठ के ऊपर बैठे भगवत प्रेम के प्रचारक माता जी, उनको हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं। नीलेश जी और शशि और अनीश और निशिता का, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे और दिल खोल के भगवान की कथा के लिए आप सबको बुलाया और हमको भी सेवा का अवसर दिया। और सीता चारू माता जी जो यहाँ रहती है आपके संग में कृष्ण भावना में, उन्होंने हमको आपकी सेवा के लिए यहाँ अवसर दिया है, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। भक्ति के नवधा भक्ति बोलते हैं, प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, उसमें पहला अंग है श्रवण। भक्ति शुरू होती है श्रवण से, श्रवण का मतलब सुनना। और दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की गई है कि भगवत प्राप्ति की कैसे जाए, तो बोला उसका रास्ता है श्रवण करना। तो श्रवण के लिए एक श्लोक बहुत सुंदर संवाद में आता है, ब्रह्मा जी नारद आपस में बात कर रहे हैं कि संसार में भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तब बोलते हैं श्रृणवताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ नित्य मतलब प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। कब भगवान की कथा सुननी चाहिए? बोला नित्य सुननी चाहिए, रोज सुननी चाहिए। बोला कैसे सुननी चाहिए? बोला श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ होता है अटल विश्वास और उत्साह कि कथा सुनना हमारा धर्म है। कैसे? जैसे आप लोग तो सब परिवार वाले हैं, बच्चे आपको भगवान ने दिए हैं, सुखी रहें, लेकिन सुबह उठा के बच्चे को स्कूल भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बच्चा अगर स्कूल जाने में देर करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, और होमवर्क बच्चा नहीं करे तो भी आप अच्छा नहीं मानते हो ना। ऐसे ही साधु संत महात्मा बैठे हैं ना, ये आप क्लास में नहीं आते हो टाइम से तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और आपको होमवर्क दिया जाता है कि जब करके आओ, नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के लिए जैसे आपको चिंता होती है, ऐसे साधु संत महात्मा के लिए वो आपके लिए चिंता होती है। तो नित्य सुनना चाहिए। श्रृणवताम श्रद्धया नित्यम, नित्यम नित्य रोज श्रद्धा से क्या सुनना चाहिए? श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ने कथा कही है वो सुननी चाहिए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की कही हुई कथा है। भागवत एक अवतार नारद भगवान का 24 अवतारों में, और दूसरा अवतार व्यास, ये दोनों भगवान के अवतार मिलकर भागवत को संकलन करके हमारे उद्धार के लिए दे रहे हैं। तो भगवान ही भगवान के गुण कह रहा है, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि भगवान के दो अवतार मिलकर, भगवान के दो अंश अवतार मिलकर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उसकी महिमा के लिए भारत को भागवत महापुराण का जो है वो व्यास देव ने तैयार किया। कब? जब व्यास देव पहले ही 4 वेद 108 उपनिषद 17 पुराण पूरी कर चुका था, फिर भी संतुष्ट नहीं था और सरस्वती के तट के ऊपर बैठा बद्री का आश्रम में चिंता में, तो वहां भागवत का प्रकट्य हुआ उन दो महानुभाव भगवान की शक्ति प्रधान अवतारों के मिलन से ये भागवत प्रकट हुई है। और भागवत का अर्थ है भगवान के समान, भागवत जस्ट लाइक गॉड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड भागवत। भगवान भागवत क्या है? भागवत है श्री कृष्णेर अंग, भगवान का अंग है, भगवान का अंग है, एक एक अंग भगवान का। भागवत में 12 स्कंद है और भगवान के अंगों का एक एक निशान है। तो भागवत भगवान से भिन्न नहीं है, भागवत भगवान का वांग्मय रूप है, शब्द रूप है। जैसे कहते कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। और भगवान ने ये भागवत के 1 स्कंद में 6 प्रश्न जब सूत गोस्वामी से पूछ रहे सनकादि ऋषि, आखिरी प्रश्न ये है, लास्ट प्रश्न ये है, श्री कृष्ण सुधा स्वधाम उपगते, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जब चले गए, धर्म ने किसका शरण लिया, धर्म किसके शरण में गया? तो 3rd अध्याय में आएगा 1 स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी, धर्म और ज्ञान के सहित कलौ नष्ट, कलकुजुल में जिन लोगों के आंखों पे अज्ञानता आ गई है उनके प्रकाश के लिए अर्को पुराण, अर्को उदय, भागवत रूपी पुराण का सूर्य का उदय हुआ है। तो कृष्ण के जाने से उनकी जगह पे भागवत पुराण संसार को प्रकाश देगा। तो ये भागवत भगवान के समान है, इसलिए इसके लिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का सेवन करना चाहिए। शुण्वताम श्रद्धया नित्यम, फिर एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात कही है, ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, सुनने वालों को बहुत चेष्टा करके, सुचेष्टा, चेष्टा का मतलब क्या है? बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्या करने के लिए? ग्रहणतस, उस भागवत को कानों से जब सुनते हैं तो उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ग्रहण करने का अर्थ क्या है? देखो सुनने के 3 अंग हैं, सुनना तब पूरा होता है जब 3 अंग उसमें होते हैं। कान तो केवल इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी मिलती है कान से, मानो अभी कोई अरबी में बोलता हो तो कान तो सुनता है लेकिन समझता तो कुछ भी नहीं है ना। तो कान तो केवल कान से आवाज के अंदर जाएगा लेकिन समझने के लिए दिमाग होगा तब समझेगा। तो सुनना कान का काम है, लेकिन दूसरा सुनने का अंग है समझना, उसको मनन बोलते हैं। वो जब दिमाग हमारा यहां होगा तब हम सुनेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ये मनन हो गया, समझ भी नहीं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, दिल जब तक मानेगा और हम स्वयं उसका अभ्यास करेंगे तब उसका रियलाइजेशन होगा या तब उसका फल मिलेगा। सुनना कान से केवल जानकारी, समझना मन से ज्ञान, करना दिल से विज्ञान, और जब दिल से करेंगे तो अनुभव होगा। और अनुभव अपना बेटा होता है, ज्ञान किताब का बेटा है, ज्ञान किताब का बच्चा है, पुस्तक में ज्ञान है वो आपके साथ नहीं चलेगा, मरते समय पाठ नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट मिलेगा, अनुभव जो जीवन का होगा वही काम आएगा। तो अनुभव होता है जब, कई लोग जानते हैं भागवत, मानो प्रोफेसर कोई होगा संस्कृत का, भागवत सब जानता होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है भागवत में कहा गया है कि भगवान का भजन करो वो करता हो, तो अभ्यास तो नहीं कर रहा है ना, तो अनुभव तो नहीं होगा। तो सुनने का 3 अंग है, श्रवण मनन निध्यासन, वेद में 3 शब्द लिखे हैं, कान से सुनना, दिमाग से समझना, दिल से करना। जब करेंगे तब जीवन में अनुभव आएगा। ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, तो लाभ क्या है ऐसे करने का? कालेन अति दीर्घेणा, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी क्या होगा? भगवान विशते हृदय, भगवान आके दिल में बैठ जाएंगे। तो भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? कि हमारे दिल में भगवान आके बैठ जाए। तो क्या भगवान पहले नहीं है क्या? परमात्मा के रूप में पहले भगवान बैठे हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं उसका पता नहीं। भागवत हमको जगा देगी ताकि हम भगवान का दर्शन कर लें। तो भगवान कहां से आएंगे, मैंने आगे राना भी है तो भगवान कैसे आएंगे? तब बोलते हैं प्रवेष्ट करण रंध्रेण, भगवान कानों के खुले सोराखों के द्वारा कथा के रूप में हृदय में प्रवेश करेंगे। तो हृदय में जाएंगे तो भगवान अंदर कैसे आएंगे लगेंगे हमको, बोलोगे स्वानम भाव सरोरोहम, हृदय कमल के ऊपर जैसा आपका भगवान की प्रति भाव है इसी रूप में आके प्रकट। आप बेटा मानोगे तो छोटा सा लाला बन के आ जाएगा, आप अगर मित्र मानोगे तो सखा बन के खड़ा हो जाएगा, वो आप उनसे प्रेम करने चाहते हो तो बांसुरी मलाद बजाते हुए वो गोपियों के बीच में खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो जाएगा। आपके भाव के अनुसार आपके हृदय में वो प्रकट हो जाएगा। आएगा कहां से, बोला कथा के द्वारा आएगा। कहां से अंदर आएगा, बोला कान के द्वारा आएगा। भगवान को देखने के लिए शास्त्र कहता है श्रोत श्रोत इक्षताम, आंख क्या है, बोला सुनना ही कान, कान ही भगवान को देखने का रास्ता है। आंख से भगवान नहीं देखा जा सकता, कान से। बोला उदाहरण क्या है, बोला रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, वो विदर्भ देश में रहती थी, सिर्फ साधु संतों से ये सुना था कृष्ण द्वारका में बहुत बड़ा द्वारकाधीश है, बहुत सुंदर है, बहुत वीर है, बहुत बलवान है, सर्व संपन्न है, और केवल सुनने से मां रुक्मणी ने कृष्ण को वरण करने का निर्णय कर लिया। इसको कहते हैं केवल सुनने से भगवान दिखता है। तो भगवान दिखता कान से है, आंख से नहीं दिखता है। भगवान आंख से हम नहीं देख सकते, ये आंखें हमारी भगवान को देख नहीं सकती हैं। भगवान दिव्य चिन्हमय है, हमारी आंखें जड़ है, लेकिन हृदय में भगवान प्रकट हो सकते हैं। कब? जब हम ध्यान बहुत श्रद्धा से कथा को सुनेंगे। तो भगवान अंदर आ गए तो करेंगे क्या, हमारे हृदय में भगवान अगर प्रवेश करके आ गए तो करेंगे क्या? अब देखिए ये बहुत बड़ा काम। धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा मैल धोएगा दिल में, आएगा अंदर घुसेगा देखेगा अरे बेचारे के दिल में कब से कचरा पड़ा है, और ये कई जन्मों का काम क्रोध लोभ मद मत्सर लेके वो घर भर के बैठा हुआ है, इससे तो सफाई होगी नहीं। अब मेरा मित्र है, मेरी कथा सुन रहा है, चलो मैं ही सफाई कर लेता हूं। तो भगवान अंदर आके आपको ये नहीं परेशान करेगा कि मेरे को अगरबत्ती चढ़ाओ, कि मेरे को धूप लगाओ, कि मेरे को भोग लगाओ, लेकिन आपके अंदर की सफाई करेंगे। घर में सब लोग रोज झाड़ू निकालते हैं, घरों में झाड़ू है कि नहीं है, कोई घर बगैर झाड़ू के है? सब लोग रोज स्नान करते हैं, शरीर को साफ करने के करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन कचरा तो अंदर पड़ा है, उसके लिए साफ करने के बाद अभी तक तो कोई ऐसी क्रीम निकली नहीं है, कोई ऐसा साबुन निकला है जो अंदर में कचरा साफ करे? वो ईर्ष्या क्रोध दूसरे की तरफ जो चीजें ये विकार अंदर, इसको साफ करने का कोई साधन है क्या? अभी ऐसा कोई साइंस ने साधन बनाया है जो अंदर साफ करे? अंदर साफ करने का साधन नहीं है। और ये तो बड़ी आश्चर्य की बात लगी। एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि गंदे से गंदी चीज ढूंढ के लाओ। अर्जुन सब जगह ढूंढ रहा था, ये गंदा होगा, बोले नहीं नहीं इससे गंदा ये होगा, ये गंदा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक जगह विष्टा बहुत बहुत दुर्गंध आ रही थी, विष्टा फेंकी हुई थी, बोले ये तो बहुत गंदी है। तब विष्टा से आवाज आया, मैं गंदी? तेरी मशीन गंदी है, ये तेरा शरीर गंदा है। कल मेरा नाम रसगुल्ला गुलाब जामुन पिस्ता काजू था, रसमलाई थी, तेरे मुंह में गया तो मेरा ये हाल हुआ। तो खराब तू के मैं, तेरी मशीन खराब है, तेरा ये शरीर की मशीन खराब है। कल तो बहुत अच्छा छप्पन भोग इसका नाम था, और आज तुम्हारी मशीन से गुजर के मेरा ये हाल हुआ है। तो खराब तो ये मशीन है। तो अर्जुन ने कहा बाकी सबसे महात्मा किसी ने कहा आपकी लोग निंदा करते हैं, बोला आत्मा की निंदा करते? बोला नहीं नहीं महाराज आपकी करते हैं, बोले शरीर की निंदा करते हैं, वो तो हम भी करते हैं, कौन सी अच्छी चीज है ये तो वैसे भी हमको ही परेशान कर रहा है, इसकी निंदा करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर पूछा क्या मेरी निंदा करके वो खुश हो जाते? बोला महाराज आपकी निंदा जब करते हैं तो बड़ा मुंह उनका फूल खुश हो जाता है। बोला देखो दूसरे को खुश करने के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, पार्टियां देते हैं, ये मुफ्त में खुश हो रहा है ना, कम से कम किसी की खुशी हमारी निंदा से हो रही है ना मुफ्त में, तो अच्छी बात है, इसमें क्या खराबी है? और कर तो निंदा कर रहा है मेरे शरीर की, वो तो हम भी कहते हैं खराब है, हम कौन सा कहते हैं अच्छे। रोज सुबह उठते हैं आंख नहीं धोए तो कचरा निकलता है, कान साफ नहीं करें तो कचरा निकलता है, जहां से देखो वहां कचरा, अंदर है तब तो बाहर आता है ना, तो भर कचरे से। पांच तत्व का पुतला कीना नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा। कभी देखो कितना प्रेमी आपका अपना सज्जन हो, पुत्र हो, अगर भगवान न करे किसी बेचारे को कभी को आग लग जाती, हम देखे हैं डॉक्टर में, हमने तो प्रोफेशन हमारा डॉक्टरी का हमने देखा था, अस्पतालों में चमड़ी उतर जाती है तो उसको देखने को कोई तैयार नहीं है, भूत भूत होता है। ये तो अच्छी ड्रेसिंग ऊपर से है, बाहर फेर दिया रंदा, ऊपर से रंदा फेर के इसको चमका दिया है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर माल भर दिया गंदा। फिर कह दिया बंदा तो बंदगी नहीं तो गंदा का गंदा, बंदगी का अर्थ है भगवान की भक्ति, उर्दू का शब्द है। अगर इंसान भगवान की भक्ति नहीं करता है तो गंदा ही है, जैसा अंदर जैसा बाहर है। तो भक्ति की, भगवान की करने से भगवान क्या करता है, भगवान अंदर की सफाई करता है, अंतःकरण की सफाई। अंतःकरण, करण कहते हैं इंद्रियों को, हमारी बाहर की इंद्रियां आंख है, नाक है, दांत है, मुख है, ये तो सब बुद्धिमान व्यक्ति, सब सभ्य व्यक्ति इन सबको रोज सफा करते हैं, लेकिन अंतःकरण मन बुद्धि और अहंकार का है। और ये मन है जिसके ऊपर जो निशान पड़े होते हैं, आपने ये तो सुना है ना, कभी जहाज का क्रैश होता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स निकाल ढूंढते हैं, सुना है ना ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा मन जो है ये ब्लैक बॉक्स है इस जहाज में, ये ब्लैक बॉक्स जो मन है इसमें सारी इंफॉर्मेशन, ये शरीर खत्म होता है ना तो वो ब्लैक बॉक्स को अनफोल्ड करके दूसरा शरीर बनाते हैं कि इसको ये चाहिए था, इसको ये दे दो। मन के चारों ओर दूसरा इंद्रियां देके शरीर बनाया जाता है। भगवत गीता में तो भगवान ने लिखा है जैसे जैसे गुलों के ऊपर से, फूलों के ऊपर से हवा गुजरती है सुगंध को ले जाती है, ऐसे मन एक शरीर से दूसरे शरीर में सारी इच्छाएं ले जाती हैं और उनके अनुसार एक नया शरीर और इंद्रियां मिलती हैं ताकि वो अपना भोग करे। तो ये जो मन है इसके ऊपर हमारे नए जन्म के लिए सारे संस्कारों का समाचार पड़ा है, ये पवित्र हो, साफ हो जाए ताकि हमको दोबारा जन्म न लेना पड़े, हमें फिर एक बार मरना न पड़े, एक बार दुखी नहीं होना पड़े, तो ये मन कैसे सफा होगा। हमारे अपने प्रयास से मन सफा होगा ये मुश्किल है। अंतर है ज्ञान और भक्ति में, इतना अंतर है कि ज्ञानी अपने आप को स्वयं सफा करना चाहता है, भक्त छोटे बच्चे की तरह जिसकी सफाई मां स्वयं करती है। भागवत भक्ति का शास्त्र है। आप तो भागवत के महात्म में सुना होगा, भक्ति देवी के दो बेटे ज्ञान और वैराग बूढ़े हो गए, तो ये भक्ति शास्त्र है। भक्ति के दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग, और भक्ति जो है उसमें भगवान भक्त की सफाई करता है, जैसे मां नए जात बच्चे की सफाई करती है। छोटे बच्चे का जन्म होता है मां साफ करती है ना, तो भगवान तो कहता है माता हम अस्य जगत हो, मैं तो जगत की माता हूं, कहां कहता है मैं माता नहीं हूं, भगवान कहते हैं मैं माता हूं। धुनोति समलम कृष्ण, सारे मैल कृष्ण बैठ के अंदर धोएगा, क्योंकि मित्र है ना, मेरी कथा सुन रहा है ना। आपका कोई, आप यहां बैठे हो ना, बाहर उस दरवाजे के पीछे खड़े होकर कोई आपका नाम ले, नीलश ने बहुत अच्छा काम किया, 12 दिन भागवत कथा की, सबको देखो अच्छा सा वहां लगा हुआ था बफे, प्रसाद सबको खिलाया, ये आवाज आपके कान में लगेगा, आपको कैसा लगेगा कोई ऐसे कहता हो, हाउ यू फील, दिल में खुशी होगी ना, अरे ये तो अच्छा आदमी मेरी बात कर रहा है। जब तुमको खुशी हो रही है, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं उसको खुशी नहीं होती है क्या, यहाँ सो बिकम वेरी पे, मेरी कथा सुन रहा है, इतने सारे यहाँ लोग रहते हैं, ये तो 10-15 लोग आते हैं कथा सुनने, क्या बात है, कितने अच्छे हैं ये। ये तो भागवत के पहले स्कंद के तीसरे श्लोक में बोला है, तत्क्षणात सुश्रुता, जैसे सुनने के लिए तत्क्षणात अवरोधयते, भगवान आके रुक जाता है, दिल में खड़ा हो जाता है, अरे मेरी कथा सुनने जाना है, अरे कितना अच्छा है, चलो मैं भी इसके दिल में बैठता हूं, देखूं तो सही क्या इसके भाव है। तो वो हमारी दिल में आके बैठ जाता है और देखता है कि इसकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, तो झाड़ू फटाफट निकालता है उसके पास है और अंदर से कचरा साफ करना शुरू कर देता है, जैसे स्टार्ट स्वीपिंग यथा सलीलम, जैसे बरसात की ऋतु में गंदा पानी हो जाता है ना जगह जगह पे, बरसात एकदम आएगी सब साफ हो जाएगा। तो भगवान इस तरीके से कई जन्मों से कटे हुए पापों को धो देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा है पहला श्लोक केवल, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय रूपी दर्पण का मार्जन करो, मार्जन मतलब सफाई करो, झाड़ू निकालो, किसके ऊपर, बोला दिल के ऊपर। वो दिल कैसा है, बोला दर्पण है, दर्पण का मतलब, उसको दर्पण पता है क्यों कहते हैं, दर्प एक शब्द है संस्कृत में, आपको आता है दर्प का अर्थ आता है, दर्प का अर्थ होता है अभिमान, जो नहीं है वो दिखे। तो आईना ऐसी चीज है, उसको ऐसे आंखों के सामने खड़े होंगे ना, कोई बात नहीं, रंग थोड़ा मेरा सांवला है लेकिन आंख तो मेरी अच्छी है ना, और प्रायः ये दर्पण सब ऐसे जेब में रखते हैं हर वक्त अपने आप को दर्प करने के लिए, दर्प से दर्पण होता है। तो हृदय कैसा है? बोला दर्पण है। इसके ऊपर हो क्या है, क्या क्या हो गया? भव महा दावा गनी, कई भव कहते हैं जन्म मृत्यु को, ये संसार का नाम है भव सागर। तो कई जन्मों से उस दर्पण के ऊपर मैल चढ़ गया है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। भगवान बैठा है हमारे हृदय में, और हृदय है दर्पण, तो हमारे को भगवान दिखता क्यों नहीं है? भाई आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको दिखना चाहिए ना कुछ, तो नहीं दिखता है क्यों? बोला मैल चढ़ गया है दर्पण के ऊपर, दर्पण मैला हो गया है, शीशे के ऊपर कचरा पड़ा है, फिर क्या करें? बोला इसको धोना चाहिए, सफाई करो। बोला कैसे करें? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम कीर्तन की जय हो, अनादि काल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देता है। ये भगवान का नाम कीर्तन और भगवान की कथा ये ऐसे है, ये भगवान का प्रेम तो आप सबका अधिकार है जन्म सिद्ध। आप सब जितने हम बैठे हैं सबके हृदय में भगवान पड़ा बैठा हुआ है, और भगवान का प्रेम भी लबालब भरा हुआ है, तैयार पड़ा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं, भगवान का प्रेम सबके हृदय में, भगवान स्वयं बैठा है, उसका प्रेम पड़ा है, तैयार पड़ा है, सिद्ध पड़ा है, उसको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बाहर निकलेगा? तब कहते श्रवणादि शुद्ध चित्ते होए उदय। जब श्रवण आदि से, श्रवण मतलब कथा सुनने से, भागवत आदि का मतलब भगवान का कीर्तन करने से अथवा भगवान की अर्चन पूजा ध्यान स्मरण करने से हृदय वो उदय होगा, शुद्ध होगा चित्त। जैसे ही शुद्ध होगा, चित्त किसको बोलते हैं? मन और चित्त, ये दो विभाग हैं। आपके कंप्यूटर में आपने देखा, एक आपका होता है कि माय फाइल्स एंड माय पिक्चर्स, देखा है ना? जो माय पिक्चर्स है ये चित्त है, और माय फाइल्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना ये मन है, मन में इंफॉर्मेशन है। मन मन के अंदर, अभी हमने देखे, अब देखो दो महीने के बाद हम आए, अचानक नीलेश कोई बोले तो नीलेश इन मन में जाएगा ना, तो मन एकदम कहेगा पिक्चर को दिखाओ तो नीलेश कैसा था, अरे ये नीलेश है, ओके ये नीलेश का पिक्चर आ गया, ठीक ठीक है, आपको मिले थे ना पहले, वो दिमाग के अंदर आपने देखा कोई आदमी मिलता है बहुत समय से तो अंदर में थोड़ा सा ऐसे आपस में वो ऐसे कुछ को दिखा दिखा कहीं देखा है, वो उस वक्त वो पिक्चर को ढूंढता रहता है, वो पिक्चर तो कहीं किसी का स्लो कंप्यूटर होता है तो देर से पता लगता है कुछ का हार्ड डिस्क की क्रेज होते तो सब कुछ भूल जाता है बेचारा लेकिन ये सिस्टम चित्त है अंदर, तो वो चित्त साफ हो जाएगा। भगवान तो कहते हैं मद चित्त, चित्त में तुम मुझको रखो, कचरा मत रखो, मेरे को चित्त में बिठा दो। बोला फायदा क्या है? बोला जब जमराज के दूत लेने आएंगे तो ये शरीर तो किसी का नहीं ले जाते, यहीं पड़ा होता है ना, कोई आदमी इस दुनिया से जाता तो शरीर तो यहीं पड़ा हमारे, तो ले क्या जाते? बोला सूक्ष्म शरीर में आत्मा को ले जाते। बोला सूक्ष्म शरीर किसका बनाया हुआ? बोला मन बुद्धि अहंकार का। तो जब चित्त में आएगा, मन में तुम्हारे को मेरे को देखे था तो दूर से नमस्कार करके चला जाएगा ना, आपका क्या करेगा वो? भगवान ही देकर हृदय में बैठे होंगे तो करेगा क्या जम का दूत? केवल भगवान का नाम लिया तो अजामिल से दूर भाग गए जम के दूत। तो जिसके हृदय में भगवान, किसी ने बोला भगवान को हृदय में बैठता है क्या? बोला हाँ बैठता है, हनुमान ने दिखाया नहीं था छाती खोल के, देखो राम सीताराम बैठा है कि नहीं बैठा है? माँ सीता ने जब पूछा कि अरे क्या तुम ये टोल के फेंक रहे हो हीरे मोती? बोला इसमें सीताराम देखता हूँ। बोला कि तुम्हारे हृदय में, बोले देखो ये माँ है कि नहीं है? तो हनुमान की तरह जिसके हृदय में चित्त में भगवान का चित्र रहता है वही उसके लिए जगह भरी हुई होती है, तो फिर कोई दुनिया का चिंता नहीं। अभी तक हनुमान जीवता बैठा है, उसको तो जमराज हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि चित्त में भगवान बैठा है, क्या करे वहां जाकर? तो भगवान जिसके चित्त में ऐसे बैठ जाएगा उसको चिंता नहीं, जिसके चित्त में भगवान उसकी चिंता दूर हो गई, उसको चिंता काहे की होगी? फिर तो भगवान ही उसका योग क्षेम का ध्यान करेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास तेषां योग क्षेमं वहामि अहम्। उसके दुख तो दुख की सुख की मैं जो जिम्मेदारी लेता हूँ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत उदाहरण है, भक्त तो अपने भक्ति में बैठे होते हैं और ऑफिस में जाना होता है तो भगवान जाके ऑफिस में काम करके आ जाते हैं। ऐसे तो कई भक्तों की जीवन की ऐसी कहानियां मिलेंगी, और ऐसे सत्य है कि झूठ नहीं, ऐसा हुआ है तब ऐसी कहानियां लगी। तो बात कर रहे थे क्या, चित्त शुद्ध जब होगा श्रवण आदि से तो होए उदय, तब भगवान का प्रेम उदय होगा। सूर्य को कहते हैं उदय होना। कोई आदमी जाता है क्या सूरज को उगाने के लिए सुबह? अपने आप उगता है ना, तो ऐसे प्रेम अपने आप निकलेगा। बोला अभी क्यों नहीं निकला है? बोला हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, कैसे होगा? एक उदाहरण देते हैं इसके लिए। गुजरात में पानी के नल देखे हैं आपने, हैंडपंप, और जब जून जुलाई के महीने में हैंड पंप को चलाते हैं तो पानी नहीं निकलता है, उसमें हवा निकलती है केवल। क्यों हवा निकलती है? वैक्यूम हो जाता है बीच में, पानी की लेवल और जो पंप का वाइसर है उसके बीच में वैक्यूम हो जाता है। गर्मी से चलाओगे तो हवा आएगी, पानी नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पानी धरती में खत्म हो गया, वैक्यूम हो गया। पर बुद्धिमान लोग क्या करते थे पुराने जमाने में मालूम है? क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी की भरते हैं, जग लेके ऊपर से पानी डालते हैं। ऊपर से पानी डालेंगे तो हवा निकल जाएगी, और फिर नल चलाएंगे तो मटके भर के पानी निकल आएगा। ऐसे भगवत प्रेम बीच में पड़ा है कई जन्मों से, बीच में ऐसा सारा वैक्यूम बन गया है। कथा कानून के द्वारा अंदर जाएगी तो वैक्यूम साफ हो जाएगा, तो प्रेम अपने आप निकल आएगा। तो ये कथा प्रेम है जो कानून से अंदर डाला जाता है, ताकि जो अंदर कचरा पड़ा है, जो वैक्यूम है, वो खाली हो जाएगा। तो भगवत प्रेम तो अपने आप निकले, ये तो कहीं बाहर से लाना नहीं है, तो भगवान तो अंदर बैठे, कहीं से आया नहीं है। और भगवान स्वयं भगवत गीता की चतुर्श्लोक में कहते हैं, ऐसा कोई भक्त प्रेम से मेरी कथा सुनने बैठ जाता है फिर भी उसके हृदय में अंदर कुछ कचरा बच जाता है, तेषाम एवानुकंपार्थम, उसके ऊपर मुझे अनुकंपा हो जाती है। अरे मेरा भक्त अभी इसके अंदर कचरा पड़ा, ये तो मैं देख नहीं सकता, फिर क्या करोगे? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतम, मैं उसके अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करता हूं। भगवान कहां से करते हैं? आत्मभाव, मैं अंदर परमात्मा के रूप में बैठा हूं ना, देखा नहीं था? जब उत्तरा चिल्लाती हुई मेरे सामने आई थी कि मेरे गर्भ के अंदर अंतिम पांडवों का अंश और भक्ति का ये चिराग जो पड़ा है ये बुझ रहा है, तब परमात्मा के रूप में मैं हृदय में बैठा था। वहां से ही चार हाथों वाले रूप में अंदर जाके मैं इतना अनुकंपित हो गया, मतलब कांप गया कि पता नहीं चक्कर चलाऊं कि गदा चलाऊं, मैंने दोनों ही चला दी ताकि बच जाए कैसे भी। इसलिए एक जगह भागवत में चक्कर है और एक जगह गदा लिखा हुआ है, और या इतना तेज गदा चलाई वो चक्कर जैसा दिख गया। तो अंदर से ही भगवान गए, बाहर से तो नहीं गए थे अंदर। आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप अंदर से ही प्रकाश देके उसके हृदय को पवित्र करता। तो ये कथा सुनने का हमारा उद्देश्य असल में है, हृदय हमारा पवित्र हो और उसमें आके भगवान विराजमान हो जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, भगवान हमारे मित्र है, हमारे अज्ञात सखा के रूप में बैठे हुए हैं। केवल हम हमारी हमारी हालत कैसा है, हिंदी में एक 63 और एक 66 36 और 63 कैसे लिखते हैं हिंदी में, देखा है? हरे कृष्ण बेटी, 36 का आंकड़ा कैसा होता है? उल्टा होता ना, एक दूसरे को पीठ होती है ऐसे ना। अभी भगवान बैठा है, इसका मुंह इधर है और हम इसको पीठ देके बैठे हुए, बैठा है दिख नहीं रहा है। कथा सुनने से हमको थोड़ा घूम के आगे से 63 बनना पड़ेगा आमने सामने, जैसे आमने सामने हो गया तो भगवान कहीं ढूंढना तो पड़े नहीं, अंदर बैठा है तो दर्शन हो ही गया ना। तो सिर्फ हमारे को पूरा ऐसे 180 डिग्री का टर्न खाना है जीवन में, और ये टर्न भगवान की कथा के द्वारा होता है, भगवान के कीर्तन के द्वारा होता है। हृदय पवित्र, टाइम कितना लगेगा, जितना हृदय के ऊपर मेल कितने जन्मों का, उसको साफ करने में टाइम कितना लगेगा, ये तो हर एक का अलग अलग है। कभी कभी आप एक महीना घर छोड़ के जाते हो, छुट्टी में वापस आते हो तो हल्का सा दर्द लगा होता है, थोड़ा मिट्टी होता है, वैसे कपड़े से साफ हो गया। तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं एक बार कथा सुन लेते हैं, नाम जपते हैं, आनंद आने लगता है उसको, और अपना जीवन उसमें समर्पण करके वो महात्मा बन के ऐसे घूमते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, थोड़ा हल्का सा कचरा होता है, जल्दी उतर जाता है। और कभी रंग करते हैं तो उसके ऊपर वो डिस्टम्बर गिर जाता है, कपड़े से नहीं उतरता है, फिर पोचा लगाना पड़ता है भाई, तो वो रगड़ने से। तो कई कई लोगों के पास महीना महीना 6-6 महीना हर साल आगे कथा करते रहते हैं, तब भी वहां से हिलने वाला नहीं है, वो निशान पक्के हो जाते हैं, फिर भी बहुत समय के बाद वो साफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कोल्टार डामर लगा हुआ आता है दर्पण के ऊपर, घिसते ज्यादा है तो आमने सामने साफ हो जाए लेकिन दिखेगा कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। दिवाओ माओ सर्ग लोके अस्मिन देव असुर एवच, भगवान ने तो साफ कह दिया कि दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, देवी और असुरी। देव जो है वो तो भगवत गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, अपना जीवन सफल, असुर है वो नहीं सुन सकते हैं। तो ये मत समझो कि सभी लोग एक बार आके मंदिर में बैठ जाएंगे और दुनिया का काम रुक जाएगा, असुर हमेशा रहेंगे। आप देवी संपत्ति के बन जाओगे तो आपका भाग खुल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास एक बार देवता और असुर दोनों आके खड़े हो गए, और झगड़ो हो गए हम बड़े असुर बोलते हैं हम बड़े हैं, कई बार तुम्हारे को यहाँ से भगाया इंद्र बाबा, कहाँ थे तुम जब बलि महाराज तुम्हारे यहाँ आया था, कहाँ छुप गए थे तुम? तो देवता कहते नहीं नहीं भगवान हमारे लिए अवतार लेता है। ब्रह्मा जी के पास दोनों आए, बोले बाबा बताओ हम में से कौन महान है? ब्रह्मा ने बोला किसको, दोनों पैदा तो मैंने किया है, किसको बोलूं छोटा किसको बोलूं बड़ा? तो ब्रह्मा ने एक युक्ति बनाई, दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया, भोजन लग गया। अब असुर जरा जिद्दी होते हैं, तो जिद्दी आदमी को पहले चांस देना है, बोला ठीक है आप आ जाओ आपको पहले चांस देते हैं, आप भोजन करो लेकिन शर्त एक है। बोला कंडीशन क्या है? बोला हाथ लंबे करो नीचे पट्टी बांधेंगे, लंबा लंबा पट्टी बांधेंगे, अब हाथ ऐसे नहीं हो सकता, जाओ भोजन खाओ। अब असुर ऐसे गया, चावल को ऐसे उठाया ऊपर उड़ाया, अपने मुंह खोल के खाया, कितने दाने पड़ेंगे? 10-12 दाने मुंह में पड़े, बाकी सब नीचे गिरे। वो एक, एक गोभी का बड़ा पकौड़ा था, उठा के ऐसे ऊपर फेंका, मुंह में तो गया नहीं, आंख को लगा के। एक पुराने जमाने में स्कूल में आप एक किताबों में एक लेसन हुआ करता, कभी आपने पढ़ा है? जाते हुए देखता है बेर में, बहुत बड़ा बेर का पड़, इतना छोटा बेर, एक लता देखता है बहुत कोमल लता और इतना बड़ा तरबूज, बोलते हैं भगवान को कुछ समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा पेड़ इतना छोटा बेर, इतनी नाजुक लता इतना बड़ा तरबूज। बेचारा आगे थक गया, बेर के नीचे सो गया, अचानक नींद आ गई, ऊपर से बेर गिरा आंख के ऊपर, उठा नहीं, बोला मैं ठीक नहीं था भगवान ठीक है, ये तरबूज ऊपर होता तो ये तरबूज यहाँ होता तो क्या होता मेरा? तो वो पकौड़ा जो यहाँ लगा तो असुर की तो आंख हिल गई बेचारे की, पेट किसी का नहीं भरा, सामान सारा समाप्त हो गया। अब देवताओं को बोला आप आओ पर भोजन करो, शर्त आपसे भी ये है हाथ लंबे करो बांधे जाएंगे। बांधे गए, पहला देवता ऐसे भोजन उठाया, पास में खड़े हो गए, मुंह के सामने खड़ा हुआ उसको खिलाने लगा, दूसरा दूसरे को खिलाने लगा, तीसरा आगे वाले को खिलाने लगा, सब प्रेम से एक दूसरे को खिला। देवता वो जो दूसरे को देता है, ये भागवत सुनने वाले के हृदय में उदारता आती है, दूसरे का भला करने का भाव आता है, हमको सुख मिला है तो दूसरे को सुख क्यों नहीं दें? वैसे दुनिया में संसार दूसरे को सुखी देख के बहुत दुखी होता है, दुनिया में इसलिए लोग दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ है नहीं, वो इसलिए दुखी है कि दूसरा सुखी क्यों है, दूसरे का सुख देख नहीं सकते दुनिया वाले, परेशानी सारी है। और दूसरा कोई सुखी हो तो कोई बात नहीं, हमारा अपना चच्चे का लड़का क्यों सुखी हो गया, इसको तो दुखी होना चाहिए ना कम से कम, ये हमारी बीमारी है, दूसरों की भी परेशानी नहीं है अपनों की परेशानी, ये सबसे ज्यादा चिंता है। अरे दूसरा सुखी है तो तुम खुश हो जाओ ना, कभी तुम्हें परेशानी होगी तो कम से कम तुम्हारा भाई कभी काम तो आएगा ना, भाई पड़ोसी कोई सुखी हो तो अच्छा है कि भिखारी हो तो अच्छा है? तो ये शास्त्र पढ़ोगे तब आपके मन में भावना आएगी कि ईर्ष्या नहीं करनी है, ये ईर्ष्या चित्ता की तरह जलाती है, दूसरे को सुखी देख के सुखी होना सीखो और फिर दुख में दुखी मत हो, ये भी आपको दुख से निवृत्ति का शक्ति भगवान की कथा से मिलेगी। दुख तो आना बंद नहीं होंगे लेकिन दुख को बर्दाश्त करने की ताकत आपको आ जाएगी। जैसे बच्चों को टीका लगा के आते हो पोलियो का, तो फिर पोलियो खत्म नहीं होता है, जरासीम तो यहाँ कीटाणु तो यहाँ होते हैं, वायरस तो यहाँ घूमता है लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो ये कथा सुनना, भगवान की कथा करना, अपने आप को इम्यूनाइज करना है कि ये बुरी आदतों से हमारा दिमाग खराब नहीं होगा, हम अपने परिवार में पिता माता भाई बहन सबका आदर करेंगे, पड़ोसी अड़ोसी का, ये शरीर का धर्म बोला है भगवद गीता में, माता पिता ब्राह्मण गुरु देव इनकी पूजा करना शरीर का तप बोला गया है, ये तप करना जरूरी है, ये तप नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये शास्त्र पढ़ेंगे तब पता लगेगा ना। लेकिन एक अनुभव हम रोज सबको बता रहे हैं, हमारी मानसिकता कैसी हो गई है आप इस उदाहरण से समझ लीजिए, ये आपने लिया ना जब, इसका नाम क्या है, वीडियो कैमरा, इसके साथ नीलेश एक किताब आया था ना, हाँ उस किताब को पढ़ा था कभी खोल के? नहीं, उस कंपनी ने क्यों बेकार में खर्चा किया था किताब छापने का, इसलिए कहा किया था कि इसको कितने वॉल्ट में डालना है क्या करना है, नहीं पढ़ते हम, ऐसे भगवान ने हमको पैदा किया तो वेद दिया ब्रह्मा के द्वारा, गीता दिया कि इसको पढ़ना, हमने इस किताब को उसको भी ऐसे ही रख दिया है जैसे इसको रख दिया है। किसी को मैंने पढ़ा आप कभी पढ़ते? बोलो हाँ मैंने पढ़ा, मतलब कम पढ़ा, बोले जब खराब हुई तब खोल के देख रहा। तो ये आदमी मरता है उसके पीछे बोलता है गीता पढ़ दो भागवत पढ़ा दे, अरे अरे जीते पढ़ना था तुमको ना, अरे जीते पढ़ने की चीज थी तो इसलिए थोड़ी छाप के उसने किताब रखा था। ये हमारी मानसिकता दर्शाता है, अवर मेंटल, जो हमारी कॉन्शियसनेस ये है कि हम, और बच्चों से आप पूछो कोई बच्चा यहाँ कोई है नहीं, बच्चों से पूछना बेटा कौन सा डे सबसे अच्छा है वीक में, क्या बोलेगा? फ्राइडे. यहां बोलेगा फ्राइडे. बोलो क्यों? बोलो कोई पूछने वाला नहीं है. वी डोंट वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड. हम अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते. क्यों? बच्चे को भाई फ्राइडे कोई नींद में उठाएगा नहीं, कोई होमवर्क पूछेगा नहीं, कोई करेगा. तो हम असल में कई जन्मों से अवॉइड करते आते हैं अथॉरिटी. और आध्यात्मिक जीवन अथॉरिटी के अंतर्गत रह के ही चल सकता है, अनुशासन में. डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन. और शिष्य को इसलिए कहते हैं अनुशासन में रहना है. तो ये अनुशासन हम चाहते नहीं है. ये बच्चों से हमारी बचपन से आदत है. छुट्टी का दिन अच्छा क्यों लगता है? कि अनुशासन से मुक्त होना चाहते हैं. और आध्यात्मिकता में छुट्टी का दिन है नहीं. एवरी हॉलीडे इज होली डे. और हमारा तो सबसे ज्यादा काम यहाँ शुक्रवार को होता है. और देशों में रविवार को हमको सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक सेवा करनी पड़ती है. बाकी दिन में कोई हाथ नहीं आता है तो भगवान का भजन करते हैं. इस दिन सेवर सेवा है. तो हमारा हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे है ये. तो हॉलीडे उनको पसंद आता है जो अनुशासन पसंद नहीं करते हैं. और प्राय हम सबकी ये आदत है, अनुशासन पसंद नहीं करते. लेकिन भागवत कहती है, शास्त्र कहता है कि गुरुम एवाभि गच्छेत. गुरु के शरण में जाना चाहिए. उसके पास छोटा होके बैठोगे तब आपने देखा है कि छोटा होने से बहुत बड़ा लाभ है. अभी यहां बैठा हूं ना मैं, इस माला के अंदर एक छोटा सा कीड़ा अगर बैठा होगा ना तो मेरे साथ यहां से चला जाएगा. और मेरी फ्लाइट अगर 12 बजे तो ये मुफ्त में बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के सीधा वृंदावन पहुंचेगा ना, क्योंकि छोटा है. इसलिए तो छोटा बनने से कोई महात्मा संत आपके ऊपर कृपा करके आपको उठा के उड़ा के ले जाएगा भगवान के पास. बड़े हो जाओगे, हमारी तरह तो बाहर इतना होगा तो मरने के बाद भी 4 आदमी नहीं उठाएंगे. तो बड़े का मतलब अहंकार सबसे बड़ा होता है. तो ये अहंकार आदमी का कम होता नहीं है. देखो, पढ़ने से ज्ञान आ जाएगा, कुछ ज्ञान आने से लोभ लालच चली जाएगी, लेकिन अहंकार नहीं जाएगा. कोई रास्ता अहंकार ही कभी तर गया हो इसका कोई उदाहरण नहीं है. अहंकार सिर्फ जाता है जब अपने से किसी बड़े के चरणों में बैठा जाता है, तब अहंकार जाता है. अहंकार सर नीचे करने से जाता है, हाथ जोड़ने से जाता है, निम्रता से जाता है. और निम्रता बड़ों के पास जब बैठेंगे तब आती है, नहीं तो नहीं आती. तो गुरुजनों के चरणों में बैठने से निम्रता आती है. और निम्रता आने से भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ और सरल हो जाती. तो निम्रता अति आवश्यक है. कोई डॉक्टर है यहां आप में से? नहीं. डॉक्टरी में जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. उसका एक ही काज है, हालांकि किताब बहुत बड़ा है, काज एक ही है. बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसकी जो चिन्ह है, ये ठोड़ी है ना, वो छाती को ऐसे लगी हुई, हाथ ऐसे होता है, तब उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. वो नॉर्मल डिलीवरी होगी. जिस बच्चे का सिर सिर्फ ऐसे हो गया, एक्सटेंडेड नेक इज ए काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं होता है किसका, जिसका गर्दन ऐसे होगा, उसको डॉक्टर को पेट फाड़ के निकालना पड़ेगा या जबरदस्ती सर नीचे करना पड़ेगा. तो इस संसार में जो निम्रता से रहते हैं वो तो भवसागर से पार हो जाते हैं. तो सर ऐसे होता है, वो गुरुजनों के द्वारा इसको नीचे किया जाएगा तब वो ये संसार सागर को पार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते. तो ये शास्त्र पढ़ने से विद्या ददाती विनयम, ये अगर दिव्य विद्या है तो इसमें हमारे अंदर निम्रता आनी चाहिए. तो निम्रता सबसे बड़ा गुण है. ये गुण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे. हरे कृष्णा. धन्यवाद आप सबका. किसी को कोई जिज्ञासा है तो प्रश्न है, तो नहीं तो उसको फोन आ रहा है कहीं 7:30 बजे जाना है. मैं देखता हूँ वो परेशान लग रहा है बेचारा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. प्रश्न 6 नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए. तो पूछा नया गुजरात में क्या बोला, तुम्हारा पिता 6 मतलब 1 6 कहां से आया? भाई 6 कहे तो कोई बात नहीं, 6 हो सकते, लेकिन पिता 6 कैसे करूं? अरे कृष्ण. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Thank us, Nilesh and Sashi. आप बोल का बहुत बहुत धन्यवाद.